अब यहाँ अगले टॉपिक में कुछ मिसालें जो कुरान पाक में बयान हुई, आप उनके नंबर नोट कर सकते हैं और बाद में उसको खुद भी पूरी आयत के साथ पढ़ सकते हैं कि जहाँ शिर्क को समझाने के लिए बड़ी खूबसूरत मिसालें दी गई। पहली मिसाल सूरत अंकबूत की आयत 41 में है, मसलुल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिल्लाही औलिया का मसलिल अंकबूत, जिन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, इनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। काश ये लोग इस हकीकत को जानते। इस मिसाल में मकड़ी के घर से तशबीह देने से क्या मुराद है? हम सब जानते हैं कि मकड़ी का घर बहुत कच्चा होता है, जिसको आप ये अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना जाले लगना, एक बिल्कुल हल्की सी आपको तार बुने हुए दिखते हैं, फूंक भी जाके मारेंगे ना टूट जाएंगे। यही मुशरिक का हाल है। शिर्क के अड्डे बाहर बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत अट्रैक्शन होती है, बड़े फैंसी लगते हैं, लेकिन जहाँ तौहीद की एक हल्की सी फूंक भी आती है वो उड़ के रह जाते हैं, यानी बेवजन है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता और हवा में उड़ने लगती हैं। इसके बरक्स ईमान और तौहीद का बहुत वजन है। दूसरी मिसाल दी गई मक्खी की, सूरत हज की आयत नंबर 73 और 74, 73 से 74 में मक्खी की मिसाल दी गई। क्या ए लोगो, एक मिसाल दी जाती है, इसे गौर से सुनो। अल्लाह ताला को छोड़कर जिन माबूदों को तुम पुकारते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी इनसे कुछ छीन ले तो इसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमज़ोर और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमज़ोर। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी जैसा कि इसके पहचानने का हक था। हकीकत यह है कि कुव्वत और इज्जत वाला तो अल्लाह ही है। मक्खी के बैठने और उसके उड़ने का तजुर्बा हर इंसान ने ज़िंदगी में कई बार किया होगा। ऐसे चुपके से चीज़ उड़ा के ले जाएगी कि हमें उसका एहसास भी नहीं होगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि मक्खी पैदा करना तो दूर की बात है, उसने तुम्हारी खुराक में से जो ज़र्रा चुरा लिया उसको वापस ला दो। कोई ला सकता है? 500 आँखें होती हैं एक मक्खी की, आप उसको जिधर से देखेंगे ना वो उड़ जाएगी, सामने से पकड़ेंगे ना पीछे से भी पकड़ेंगे तो उड़ जाती है। आप कहते हैं इसको कैसे दिखा, उसके पीछे भी आंखें होती हैं। सिर्फ एक मक्खी की तख्लीक पे आप गौर करके देखें तो बंदा कहने लगता है कि वाकई अल्लाह ताला तेरी तख्लीक बातिल नहीं है, तूने जो पैदा किया है वो बेहतरीन पैदा किया है। तो जो लोग एक मक्खी से चीज़ छुड़ा नहीं सकते, फिर वो अल्लाह के हाथों से या तकदीर के पंजों से चीज़ों को कैसे छुड़ा सकते हैं? तीसरी मिसाल जो दी गई वो बड़ी ही खूबसूरत है, सूरत रात की आयत है 14, 14, वल्लज़ीन यदून मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर जिन्हें ये मुशरिक लोग पुकारते हैं वो माबूदाने बातिल, इनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते। इन्हें पुकारना तो ऐसा ही है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर इससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं बेकार जाने वाली हैं। कभी आपने कुएं के पास जाके या समंदर या दरिया के पास जाके पानी पिए? हमेशा खुली जगह से कहीं से भी पानी पीना तो हाथ को यूं करना पड़ता है, जैसे एक चुल्लू सा बनते हैं ना लप। अब इस तरह आप करेंगे ना, टैब के नीचे भी ग्लास ना होता पानी ऐसे रखें तो इसके अंदर पानी आएगा, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर कोई इस तरह करे खुले हाथों के साथ पानी में जाके हाथ रखे पानी आएगा। ये मिसाल दी है कि मुशरिक की मिसाल ऐसी है कि जैसे खुली हथेलियों से कोई पानी पीना चाहे पानी नहीं मिलेगा, तो मुशरिक जो है वो तो लोग उसे लेने जाते हैं लेकिन मिलता नहीं। आप इन बातों को सुनते हुए सोच रहे होंगे कि ये बातें तो ये बताती हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और से मिलता नहीं है, लेकिन मुशाहिदा तो इससे मुख्तलिफ है। हो सकता है आप में से कभी किसी ने किसी की कहानी सुनी हो, और लोग अपने शिर्क को साबित करने के लिए बहुत कहानियां भी घड़ते हैं। कभी आपको अल्लाह ना करे कि इस नियत से कहीं जाने का इत्तेफाक हो कि आप भी कुछ मांगने जाएं, लेकिन अगर आप सिर्फ इबरत की निगाह से लोगों को देखें तो लोग कब्रों पर बैठे कहानियां सुना रहे होते हैं। जैसे आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है और आप अपने दोस्तों को बताते हैं ना कि तुम भी चलो, इस तरह लोग एक दूसरे को कब्रों पे और दरगाहों पे जाने की दावतें देते हैं, वहाँ गई तो ये हो गया, वहाँ गई तो ये ना हुआ। और हमारे हाल तो हालात इतने ख़राब हैं कि बड़े बड़े हमारे लीडर्स और कायदीन भी कहते हैं कि अगर फलां वक्त पे मैं फलां दरगाह पे पहुंच जाता तो मेरा तख्ता नहीं उल्टा जा सकता था और मेरी सदारत और मेरी वजारत ख़त्म ना होती। तो यहाँ थोड़ा सा समझना चाहिए। आप देखिए कि एक रिवायत का खुलासा बताऊंगी आपको कि एक शख्स जब अल्लाह ही को पुकारता है हर वक्त उसकी तड़प यही कि अल्लाह दे दे, अल्लाह ने कोई नेमत नहीं दी, सुबह मांगता है, शाम को मांगता है, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह ताला नहीं देते। फरिश्ते उसकी आवाज़ को सुन के अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह, तेरा ये बंदा सिर्फ तुझसे मांग रहा है, तू क्यों नहीं देता? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने देना है इसको, मेरे बंदे को यकीन है मैं दे सकता हूँ, मैं दूंगा, लेकिन मैं इसको अभी क्यों नहीं दे रहा? कि जब ये सिर्फ मुझे ही पुकारता है ना, तो मुझे इसकी पुकार से खुशी बहुत होती है। आज अगर मैं इसको देने लग जाऊँ ना, तो कल से ये पुकारना छोड़ देगा। मैं इसकी इस आवाज़ से, इसकी इस पुकार से लज्जत लेना चाहता हूँ, क्योंकि अपना ये कहीं नहीं जाएगा, इसको पता मिलना इधर से ही है। और इसके बरक्स एक दूसरा बंदा, एक जगह गए वहाँ से मांगा, नहीं मिला, दूसरी जगह, किसी जगह जाके जूं ही वो फलां बुजुर्ग या फलां बाबे या फलां बुत या फलां किसी भी गैर खुदा से मांगने लगता है ना, अभी वो बात करता ही है ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ, ये जो बात कह रहे हैं ना, इसकी पूरी कर दो, क्योंकि इसकी आवाज़ से मुझे कराहत हो रही है, मुझे इसकी आवाज़ बड़ी बुरी लग रही है, इसका मुंह बंद कर दो, जाओ इसको दे दो। लेकिन इसको इस शिर्क की सज़ा क्या दो, कि इसके दिल में ये ख्याल डाल दो कि मुझे फलां साहिबे कब्र से मिला है, ये वहाँ ये अकीदा लेके उठेगा वहाँ से कि ये कब्र वाले ने दिए, ये बाबा जी ने दिए। आप लोगों से कहता हुआ सुने होंगे, मैं तो बस जाने की देर थी, मेरा तो काम यूं हो गया, इतने साल से बीमार था, बस वहाँ जाके इस्लामी दी और सेहत हो गई। अब आप बताइए, एक तरफ ये है कि मिल गया और ईमान चला गया, और दूसरी तरफ है कि ईमान से की सलामती है, लेकिन नहीं मिली तो ना मिले, हमने क्या करनी है इस दुनिया की चीज़ें, हमें तो हमारे रब का साथ चाहिए। तो कभी भी दुख में, तकलीफ़ों में, आजमाइशों में अपने ईमान को ज़ाया ना करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ईमान देता ही उस वक़्त है जब हमारी कोई बात पूरी नहीं होती और मुश्किलात में होते हैं, लेकिन जब इंसान दूसरों के दर पे जाके झुकने लगता है, तो उसकी वजह से फिर उसका जो चीज़ मिली होती है वो भी उसकी ज़ाया होने की उम्मीद होती है। अगली मिसाल जो दी गई सूरह ज़ुमर आयत 29 में, अल्लाह ताला एक मिसाल देता है, एक ग़ुलाम तो वो है जिसके मालिक होने में बहुत से कज खुल्क यानी बुरे अखलाक वाले आका शरीक हैं, जो इसे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरा वो शख्स मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक ही आका का ग़ुलाम है। क्या इन दोनों का हाल यकसा हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ये कैसी मिसाल है? मसला आप देखिए कि लोग अपने घरों में काम करवाने के लिए ख़वातीन को हायर करते हैं ना, अपने मुल्कों में सोचिए, एक टर्म है बहुत आम, मासी की, मासियाँ। अब एक वो खातून है, वो खादिम है, जो सिर्फ़ एक ही घर में रहती है, पीछे कहीं क्वार्टर दिया हुआ है, वो सुबह शाम वहीं है। अब देखिए कि ऐसी खादिमा जो होती है ना, उसकी सारी फ़िक्र घर वालों को होती है, खाने का फ़िक्र, पीने का फ़िक्र, ईद आ रही है तो ईद के कपड़े, रमज़ान आ रहा है तो राशन। और इसके बरक्स वो ख़वातीन भी होती हैं जो कई घरों में जाती हैं, इधर गई तो बर्तन धोए, फिर उधर से उठी तो कपड़े धोए, वहाँ से उठी तो सफाई की। अब वो कई घरों में जाने वाली है ना, अब होगा क्या? जिसके घर सुबह जाएगी ना, अब नाश्ते का वक्त है, तो वो क्या सोचेगी? कोई बात नहीं ना, वो अगले घर में जाएगी तो वहाँ से खा लेगी। और जब वो बेचारी काम कर कर आके वहाँ जाएगी ना, तो वो कहेगी, अच्छा इसने पिछले घर से खा लिया होगा, मैं क्यों दूँ? और बाज़ जब ऐसी गरीब औरतें सारा दिन भूखी रहती हुई घरों को रात को वापस आती हैं। यही मिसाल है इस आयत में कि एक शख्स एक का खादिम है, क्या वो अच्छा है? या वो शख्स जो कितनों का खादिम है और गुलाम है, और वो सारे हैं भी बदखुल्क। अल्लाह अकबर। फिर अगली मिसाल सूरत रूम की आयत 28 में, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी ज़ात से ही एक मिसाल देता है, क्या तुम्हारे इन ग़ुलामों में से जो तुम्हारी मलकियत हैं, कुछ ग़ुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए मालो दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हों? और क्या तुम इनसे इस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने हमसरों से डरते हो? इस तरह हम आयत खोल कर पेश करते हैं इन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। ये क्या मिसाल है? हम में से कोई ये चाहता है कि मेरे पास जो बहुत सारा माल है, मैं उसको अपने मुलाजिम के साथ आधा आधा बांट लूं, ताकि मेरी और उसकी, यानी समझे कि प्रॉपर्टी और मेरी, मेरा और उसका बैंक बैलेंस सेम हो जाए। ऐसा करते हैं? ऐसा करेंगे तो अगले दिन वो काम भी कैसे आएंगे? अल्लाह ने ये जो निज़ाम बनाया है, कुछ को कम दे के, कुछ को ज़्यादा दे के, तो ये इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। बिल्कुल यही मिसाल है कि तुम तो अपनी दौलत अपने मुलाजमों और ग़ुलामों के साथ शेयर नहीं करते, कि चलो ये भी और हम दोनों एक जगह हो जाएं, तो क्या अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात इंसानों में से कुछ इंसानों से शेयर कर लिए हैं कि चलो तुम भी इनको सुन लो और मैं भी इनकी सुन लो? तो जब तुम नहीं करते तो अल्लाह ताला कैसे करेंगे? फिर अगली मिसाल सूरत नहल की आयत 75 में दरब अल्लाहु मसलन बयान करता है अल्लाह ताला एक मिसाल। एक तो है गुलाम जो दूसरे का ममलूक है और ख़ुद कोई इख्तियार नहीं रखता, जैसे मुशरिकों के ठहराए हुए शुरका। दूसरा शख्स वो है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया है और वो इसमें से खुले और छुपे अपनी मर्जी से खर्च करता है, यानी पूरी तरह बा इख्तियार है, जैसे अल्लाह ताला। बताओ क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हरगिज़ नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। एक शख्स है वो पूरी मर्जी का मालिक है, जब जब खर्च करे, ना खर्च करे, ज़्यादा करे, कम करे, और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट तो सही नहीं ना। तो अल्लाह ताला की मिसाल इसमें क्या दी गई कि अल्लाह जब चाहे खर्च करे, रात को दे, दिन को दे, उसके कोई वक्त नहीं है, उसके लिए कोई ये नहीं है कि इस वक्त वो देगा तो उसके माल में कमी हो जाएगी। तो क्या तुम ऐसे मालिक, ऐसे दाता को छोड़कर गैरों के पास जाते हो जिनके टाइम भी हैं, जिसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जहाँ जाने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है? अब देखिए कि हैरत होती है ना, और हैरत होनी वैसे नहीं चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कलामे मजीद में ये बात बता दी कि मुशरिक की अक़ल कम हो जाती है। यानी सबसे पहले शिर्क का जो असर पड़ता है ना, वो इंसान की अक़ल पे मत मारी जाती है। इसीलिए आप बार दफ़ा लोगों को आप इतनी स्टूपिड हरकतें करते देखेंगे, शिर्क शिर्क करते हुए देखेंगे, लेकिन उनको फील नहीं होता। बस आप देखिए कि बिलफर्ज एक शख्स है, वो एक बुत के सामने खड़ा है, मिट्टी का बुत, उसको ठोकर मारो वो गिर जाएगा, उसको कचरे में फेंक दो वो वहीं गिरा रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि जो इंसान इतना इंटेलेक्चुअल है, हो सकता है वो दुनियावी मैदान में बहुत ज़्यादा जीनियस हो, पढ़ा लिखा हो, कितने लोग उससे डरते हों, उसको सलामे करते हों, लेकिन जो ही वो बुत के सामने आता है उसकी अकल मारी जाती है। वो नहीं सोचता कि इस बुत की बजाय उन हाथों को पूछ लूं जिन्होंने इस बुत को घड़ा। एक हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की कहानी में आता है कि उन्होंने अबू तलहा को तबलीग की थी, कहने लगी कि तुमने पूजना है तो कम से कम उस बढ़ई को पूज लो जिसने इस बुत को लकड़ी से गढ़ा है। चलो नहीं, उसको नहीं करना, तुम उस किसान के हाथों को उसको पूज लो जिसने बीज लगाया और उसके बाद दरख्त उगा। तुम उसको पूज रहे हो कि जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। और ये बात अबू तलहा के दिल में आ गई और अल्लाह ने उनका दिल खोल दिया। तो लिहाजा अकल मारी जाती है, ऐसे शख्स फिर अपने पास से कोई चीज़ सही सोच ही नहीं सकते। फिर अगला मसला है, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की बारगाह में फ़रिश्ते, अम्बिया और रुसल और औलिया और सुलहा इन मुशरिकीन के ख़िलाफ़ गवाही देंगे जो दुनिया में इन्हें अल्लाह ताला का शरीक ठहराते रहे होंगे। क़यामत के रोज़ मुशरिकीन के माबूद इनके कोई काम नहीं आएंगे। अब देखिए, अमूमन जिनको पूजा जाता है वो या तो फ़रिश्ते होते हैं। फ़रिश्तों की मिसाल सूरत सबा आयत 40 और 41 में है। और जिस दिन अल्लाह ताला इंसानों को जमा करेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये मुशरिक लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे? फरिश्ते जवाब देंगे, पाक है तेरी ज़ात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है, ना कि इन लोगों से। दरअसल ये हमारी नहीं, जिन्नों की इबादत करते थे। इन मुशरिकीन में से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। यहाँ आपके जहन में रहना चाहिए कि मक्का के कुछ कबाइल ऐसे थे कि जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ करार देते थे, और फरिश्तों को पूजने का तसव्वुर तो आज भी मौजूद है। बास लोग फरिश्तों को पूजते हैं, तो कल वो फरिश्ते अल्लाह ताला को कह देंगे, हमने तो नहीं कहा था कि हमें पूजो। दूसरे जिनको लोग अक्सर पूजते हैं वो अंबिया और रसूल थे अपने वक्त के, उसकी बड़ी मिसाल आज के दौर के नसारा हैं। इसकी दलील सूरत मायदा आयत 109 में है, यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल, जिस दिन अल्लाह ताला सब रसूलों को मुखातिब करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वो अर्ज करेंगे, हमें कुछ इल्म नहीं, गैब की बातें तो आपके इल्म में हैं। दूसरी दलील सूरत मायदा ही की आयत 116 से 117, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो? तो वो जवाब में अर्ज़ करेंगे कि सुबहान अल्लाह, मेरा ये काम न था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक ही ना था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो तुझे ज़रूर इल्म होता, तू जानता है जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। बेशक तू सारी पोशीदा बातों से वाकिफ़ है। मैंने इनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, वो ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। मैं उस वक्त तक इनका निगरान था जब तक मैं इनके दरमियान था। जब तूने मुझे वापस बुला लिया तो फिर तू ही इन पर निगरान था और तू सब चीज़ों पर निगरान है। देखिए कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जीसस हमारे लिए सूली पे चढ़ गए, अब जो चाहे हम करें हम आज़ाद हैं। और मैंने किसी का एक कॉल पढ़ा, किसी ने अपनी क्रिश्चियनिटी को साबित करते हुए और हज़रत ईसा और अल्लाह के नबी का तकाबुल क्या किया कि हमारा नबी तुम्हारे नबी से अच्छा है। क्यों? कि हमारा नबी हमारे गुनाहों के लिए भेंट चढ़ गया कि तुम जो मर्जी कर लो मैं मरता हूँ, और तुम्हारा नबी तुमसे बेटे मांगता है जिनको तुम जंगों में और जिहाद में कत्ल करवाते हो। यानी तुम्हारा नबी तुम्हारे बेटे मांगता है, और हमारे दीन में क्या कि अल्लाह ने अपना प्यारा और अखलौता बेटा जो वो हमारे गुनाहों की भेंट चढ़ा दिया। तो बात यह है कि अगर कोई ऐसा भी कहे तो उसको कहा जा सकता है कि दुनिया में क्या ये काम हो सकता है? क्या ये अनफेयर होना नहीं है? करे कोई और भरे कोई, करो गुना तुम और सूली पे दूसरा कोई चढ़ जाए। लेकिन कल अल्लाह ताला का और हज़रत ईसा का ये मुकालमा होगा तो क्रिश्चियनिटी की सारी दीवारें गिर जाएंगी। कोई भी नज़रिया रख लें वो इसी के ऑपोजिट जाता है कि तुम क्या बात करते हो, कैसे बात करते हो, क्या तुम समझते हो कि कल क़यामत के दिन हज़रत ईसा बहुत खुश होंगे तुम्हारे इन कामों पे? वो तो बेजार हो जाएंगे तुम्हारी इन सारी चीज़ों से। फिर उसके बाद लोग वलियों और सुलहा यानी नेक लोगों को पूछते हैं तो वो लोग कल क्या रवैया अख्तियार करेंगे, इसका जिक्र सूरह फुरकान की आयत 17 और 18 में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिस दिन अल्लाह ताला इन मुशरिकों को भी इकट्ठा कर लाएगा और इनके माबूदों को भी बुलाया जाएगा जिन्हें आज अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं, फिर इन माबूदों से पूछा जाएगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद राहे रास्त से भटक गए थे? वो अर्ज़ करेंगे पाक है तेरी साथ, हमारी तो ये मजाल भी न थी कि तेरे सिवा किसी को अपना मौला बना लेते, मगर तूने इनके बाप दादा को खूब सामान्य ज़िंदगी दिया हत्ता कि ये तेरे इरशादात को भूल गए और शामत ज़दा होकर रह गए। यानी वो भी उस दिन इनकार कर देंगे। दूसरी दलील सूरह यूनुस की आयत 28 और 29, और जिस दिन हम इन सब यानी शरीक ठहराए गए और शरीक ठहराने वाले लोगों को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो इन लोगों से जिन्होंने शरीक किया है कहेंगे कि ठहर जाओ तुम सभी और तुम्हारे ठहराए हुए शरीक भी, फिर इनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे। यानी वो मुशरिक और इनके ठहराए हुए शरीक भी एक दूसरे को पहचान लेंगे। तब इनके ठहराए हुए शरीक कहेंगे तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, और इस बात पर हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है, अगर तुम हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इबादत से बेखबर थे। यानी जो नेक लोग हैं ना वो कहेंगे हमने तो नहीं कहा था कि हमें पूजो। देखिए दो तरह के बुजुर्ग होते हैं, एक तो वो है कि जो खैर से ज़िंदगी भर खुद पीर बन के सामने पेश होते हैं और वो लोगों को खूब दावत देते हैं कि आओ हमें नजराने चढ़ाओ और जो हम कहें उसको मानो, और साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपने मज़ार बना के खूब सजी सवरी कब्रें छोड़ते हैं कि जब हम मरेंगे तो तुम हमारी कब्र पे आना, आज हमारे पास आए तो कल कब्र पे आना। दूसरे वो हैं जो अपनी ज़िंदगी में नेक थे, मवाहिद थे, तौहीद परस्त थे, लेकिन उनसे मोहब्बत में गलूफ में इतना ज़्यादा लोग आगे बढ़े कि उन्होंने उनको खुदा बना लिया। दोनों का फ़र्क होगा। पहली किस्म के जो बुज़ुर्ग हैं वो तो हसबु जहन्नम यानी वो भी अपने मुरीदों के साथ खुद भी आग में जाएंगे, लेकिन जो दूसरी किस्म के थे जिनको लोगों ने खुद ही उनके बाद बना लिया फिर वो कल बेजार होंगे। वो कहेंगे अल्लाह ताला हमने तो इनको नहीं कहा था कि हमें पूजा जाए। तो लिहाजा अगर आप कुछ बुज़ुर्गों के नाम सुनते हैं जिन पे आज के दौर में बड़ी बड़ी दरगाहें बन चुकी हैं तो उनका मामला अल्लाह पे डाल दें, अगर उनके दिल में तौहीद थी अल्लाह ताला उनको बचा लेगा, और अगर उन्होंने खुद ही ये सब कहा था तो फिर उनके साथ ये मामला नहीं होगा। फिर अगली बात, क़यामत के रोज़ मुशरिकों और शुरका के हालते ज़ार पर कुरान पाक का एक तंजिया तबसरा कहाँ है? सूरत सौफात की आयत 22 से 26। क़यामत के रोज़ हुक्म होगा घेर लाओ इन सब जालिमों को और इनके साथियों को और इन माबूदों को जिनकी बंदगी किया करते थे अल्लाह को छोड़कर, फिर इन सबको जहन्नुम का रास्ता दिखाओ, और हाँ ज़रा इन्हें ठहराओ, इनसे कुछ पूछना है। क्या हो गया है तुम्हें, तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? अरे आज तो ये सब बड़े फरमा बरदार बने हुए हैं यानी हर बात पर बिला चूँ चिरा अमल कर रहे हैं। यानी दुनिया में तो मानते नहीं थे और आज कोई एक दूसरे की मदद ही नहीं कर रहा। इसी तरह क़यामत के रोज़ मुशरिक अजाब देखकर शिर्क से इनकार और तौहीद का इकरार करेगा, लेकिन इस वक्त तौहीद का इकरार उसे कोई फ़ायदा ना देगा। इस बात की दलील है सूरत मोमिन की आयत 84 और 85, 84 और 85। और जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो पुकार उठे, हमने मान लिया अल्लाह वख्तहू ला शरीक इलाह को, और हम इनकार करते हैं इन सब माबूदों का जिन्हें हम इसका शरीक ठहराते थे। मगर हमारा अजाब देख लेने के बाद इनका ईमान इनके लिए कुछ भी नफ़ा बख्श नहीं हो सकता था, क्योंकि यही अल्लाह ताला का कानून है। वो हमेशा से इसके बंदों में चला आ रहा है, चुनांचे इस वक्त काफिर लोग खसारे में पड़ जाएंगे। तो इसे क्या पता चला कि आखिर में तौहीद का इकरार किया तो क्या किया? जैसे पुलिस मैन को देख के अगर कोई कहे कि मैं चोरी से तौबा करता हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह कोई अपनी ज़िंदगी में अगर शिर्क करता रहा और उस वक़्त तौहीद की बात करेगा तो उस बात को कबूल नहीं किया जाएगा। मुशरिकों के लिए कुरान मजीद की दावत फ़िक्र सूरत अलनाम की आयत 63 से 64 में है, कुल मई युनजी कुम मिन जुलुमातिल बर्री वल बहर। ए नबी, इनसे पूछो सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है, कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गड़ा कर और चुपके चुपके दुआएं मांगते हो, किससे कहते हो कि अगर इस बला से उसने बचा लिया तो हम शुक्रगुजार होंगे। कहो अल्लाह ताला तुम्हें इससे और तकलीफ़ से निजात देता है, फिर तुम दूसरों को इसका शरीक ठहराते हो। सूरत मोमिनून की ही आयत 84 से 89 में है, मुशरिकों से कहो बताओ अगर तुम जानते हो कि ये ज़मीन और जो कुछ इसमें है वो किसकी मलकियत है, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ताला की। कहो तुम होश में क्यों नहीं आते। इनसे पूछो सातों आसमान और अर्शे अजीम का मालिक कौन है, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ताला। कहो तुम डरते क्यों नहीं। इनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो तो बताओ हर चीज़ पर इक्तदार किसका है और कौन है जो पनाह देता है और इसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर कहाँ से तुम धोखा खाते हो। सूरत अंबिया की आयत 21 से 22, क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्जी यानी ज़मीन पर रहने वाले माबूद ऐसे हैं कि बेजान में जान डालकर उठा खड़ा करते हों? अगर आसमान और ज़मीन में एक अल्लाह तला के सिवा दूसरे माबूद भी होते तो ज़मीन और आसमान दोनों का निज़ाम बिगड़ जाता। बस अर्श का मालिक अल्लाह ताला है इन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। और आखिरी आयत इस बाब की आयत नंबर 61 है सूरत नमल की, वो कौन है जिसने ज़मीन को जय करार बनाया और इसके अंदर दरिया रवां किए और इसमें पहाड़ों की मेहें गाड़ दीं और पानी के दो ज़खीरों के दरमियान पर्दे खायल कर दिए? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। आप इन आयतों को पढ़ते हुए ये बात सोच रहे थे जो मैं सोच रही थी, शायद आपके भी जहन में आई हो, कि कुरान पाक कितना खुल के बयान करता है ना शिर्क और तौहीद के फ़र्क को, और ये तो सिर्फ चंद चीदा चीदा आयते हैं ना। कुरान पाक का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है ना वो सिर्फ शिर्क और तौहीद के फ़र्क को बताता है। जो सोच मुझे आती है इन आयतों को पढ़ते हुए वो क्या है कि आखिर वो लोग जो दीन के नाम पे भी शिर्क करते हैं वो इन आयतों को कैसे समझते हैं? आप देखिए कि बाज़ दफ़ा शिर्क जो है वो मज़हबी रहनुमाओं की कस्टडी में होता है, उनके अंडर शिरकिया रसूमात होती हैं। बाद लोग दीन का नाम भी ले रहे होते हैं और साथ गैरों से मदद मांगना भी सिखा रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है ये इंशाल्लाह अपने जो आखिरी टॉपिक होगा उसमें देखेंगे कि जब इंसान एक रास्ते पे चलता है ना फिर अल्लाह ताला उसके लिए वही रास्ता आसान कर देते हैं। वल्लाहु यहूलु बैनल मरी व कल्बी, अल्लाह ताला बंदे और उसके दिल के बीच में हायल हो जाता है, फिर समझ ही नहीं आने देता। जो तुम कर रहे हो करते रहो, आप जो काम करना चाहते हैं ना अल्लाह ताला आपके लिए वही आसान करता है। बस आप यहाँ आज बैठे हुए हैं तो आपके लिए बैठना आसान है, और अगर आप इस वक्त बाजार में घूम रहे होते, इरादा करते, तो आप बाजार में घूम रहे होते। तो जो मुशरिक होता है ना वो चीज़ को जैसे देखता है उसको वैसे ही लगने लगती है। तो ये थी कुरान पाक की आयतें।